हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और आज हम श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, आप हमारे पीछे पीछे इसे दोहरा सकते हैं।
या इच्छा एषा सृजति इदम् अव्ययो या इच्छा एषः सृजति इदम् अव्ययो य एव रक्षति अवलुम्पते च यः य एव रक्षति अवलुम्पते च यः। तस्या बलः क्रीडनम् आहुर् ईशितो तस्या बलः क्रीडनम् आहुर् ईशितो चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु चराचरं निग्रहे संग्रहे प्रभु य इच्छा एषा सृजति इदम् अव्ययो य एव रक्षति अवलुम्पते च यः। तस्या बलः क्रीडनम् आहुरीषितो चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु
अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, कृपया अनुवाद हमारे पीछे दोहराइए। उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओं, उस अविनाशी भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है, चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौने के समान है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। तात्पर्य कृपया सुनिएगा। इस प्रसंग में रानियां तर्क कर सकती हैं, यदि भगवान ने हमारे पति की रक्षा गर्भ में की थी तो अब वे क्यों नहीं कर रहे। इस प्रश्न का उत्तर यह है, कोई भगवान के कार्यों की आलोचना नहीं कर सकता। भगवान सदैव स्वतंत्र हैं, अतएव वे रक्षा कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। वे हमारे आदेश वाहक नहीं हैं, जो उन्हें रुचता है वही करते हैं, अतएव वे परमेश्वर हैं। भगवान इस संसार का सृजन किसी के अनुरोध पर नहीं करते, अतएव वे अपनी इच्छा से समस्त वस्तुओं का संहार कर सकते हैं, यही उनकी श्रेष्ठता है। यदि कोई तर्क करता है कि वे इस तरह क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर यही है कि वे ऐसे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वे सर्वोपरि हैं। कोई उनके कार्यकलापों के प्रति आपत्ति नहीं कर सकता। यदि कोई तर्क करता है कि इस पापपूर्ण सृष्टि तथा संहार का क्या प्रयोजन है, तो इसका उत्तर यह है कि वे अपनी सर्वशक्तिमान शक्तिमता सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई उनसे प्रश्न नहीं कर सकता। यदि उन्हें इसका उत्तर देना होता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो उनकी सर्वश्रेष्ठता में बट्टा लगता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और ये बहुत ही रोचक प्रसंग है और हमारी स्थिति से बहुत मिलता जुलता ये प्रसंग है। इस श्लोक से खासकर हमें ये समझ आएगा कि किस प्रकार से जो हिरण्यकश्यप की मेंटालिटी थी, दरअसल जो उनकी विचारधारा थी हिरण्यकश्यप की, जो असुरों की विचारधारा होती है, दरअसल हमारी विचारधारा भी ऐसी कुछ मिलती जुलती होती है। तो जैसे प्रसंग यही चल रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यप अपनी माता को, अपने भतीजों को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं ये कि किस प्रकार से जो आत्मा है कभी मरती नहीं है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, और ये समझाने के लिए वो ये कथा सुना रहे हैं जिसमें यमराज जी उपदेश दे रहे हैं कुछ स्त्रियों को। तो दरअसल सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि कभी कभी हम सुनते हैं कि असुरों को ज्ञान है आत्मा का, तो समझ नहीं आता भाई अगर असुरों को ज्ञान है तो मतलब असुरों भक्तों में भेद ही क्या रह गया फिर। अगर असुर लोगों को भी आत्मा का पूरा ज्ञान है, क्योंकि अगर हम हिरण्यकश्यप की ये जो श्लोक अगर पढ़े जो हिरण्यकश्यप कथा सुना रहे हैं यहाँ पर, तो ये पढ़कर हमें पता लगेगा कि जो भगवद गीता का उपदेश है, जो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान समझा रहे हैं, उसको हिरण्यकश्यप इलैबोरेट करके और विस्तार से समझा रहे हैं। तो जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो डाउट आता है मन में कि फिर क्या है, मतलब असुरों और भक्तों में भेद क्या रह गया। तो दरअसल असुरों और भक्तों में सबसे बड़ा भेद यही है कि ज्ञान दोनों को है, परंतु जिसको प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, अपने जीवन में उतारता है, वह भक्त है। और जो सिर्फ ज्ञान को ज्ञान की तरह रखता है और वो ज्ञान का उपयोग करता है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, जिस प्रकार हिरण्यकश्यप यहां पर ज्ञान का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, इसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए वो एक अक्षर भी नहीं बोल रहे हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। और इस अगर श्लोक को आप पढ़ेंगे तो हालांकि श्लोक में जैसे, क्योंकि हिरण्यकश्यप क्या प्लानिंग कर रहा है, विष्णु को मारने की, यही हिरण्यकश्यप की प्लानिंग चल रही है कि किस प्रकार से वो विष्णु को मार सकता है। पर अगर हम देखें तो इस श्लोक में कैसे हिरण्यकश्यप भगवान का गुणगान कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है भगवान को, वह कह रहा है उस अविनाशी भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। हिरण्यकश्यप खुद बता रहा है कि उस भगवान की कृपा से सब चीजें होती हैं, इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार, संहार भी भगवान की क्या है, कृपा है, ये हिरण्यकश्यप बता रहा है यहां पर। और फिर भी हिरण्याक्ष की मौत पे वो क्या कर रहा है, युद्ध करने की प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है विष्णु को किस प्रकार से मारा जा सके। तो दरअसल यही भेद है भक्तों की चेतना में और भगवान की और राक्षसों की चेतना में, आसुरी चेतना में। इसके ट्रांसलेशन में आखिर में बताया गया है कि इंग्लिश में बताया कि ही इज कंप्लीटली कॉम्पिटेंट टू डिस्ट्रॉय एंड प्रोटेक्ट, कि भगवान जो है कंप्लीटली कॉम्पिटेंट है, पूर्ण रूप से सक्षम है भगवान कि किसी को भी नाश कर सकते हैं और किसी की रक्षा कर सकते हैं। तो जब हम ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि भगवान किसी की भी रक्षा कर सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं, रक्षा करना तो हमें समझ आता है, पर मार सकते हैं ये हमें समझ नहीं आता। जब हम ये समझ सुनते हैं कि भगवान किसी को भी मार सकते हैं, तो ये डाउट हमारे मन में आता है कि फिर ये मर्सीफुल कैसे हुए, किस प्रकार से भगवान कृपालु हुए कि अगर वो विनाश कर सकते हैं। तो दरअसल ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि चाहे भगवान किसी को मारें, चाहे भगवान किसी की रक्षा करें, अल्टीमेटली वो क्या है, उसकी रक्षा है। जैसे इसी इंसिडेंट में हम आगे जाके देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप को मारा, पर अगर हम कंपैरिजन देखें तो भगवान ने दोनों की क्या की, रक्षा की है भगवान ने। क्योंकि भगवान को पता है कि अपने जीवों की, क्योंकि भगवान का एक नाम है भूतवृत्त, भूतवृत्त का मतलब है हर जीवों का पालन करने वाला। तो भगवान किस प्रकार से हर जीव की रक्षा करते हैं, अगर वो असुर है तो उसकी हत्या करके उसकी रक्षा करते हैं, और अगर कोई भक्त है तो उसकी रक्षा करके उसकी रक्षा करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं गोवर्धन लीला में किस प्रकार से भगवान ने इंद्र के घमंड को तोड़ा और ब्रजवासियों की रक्षा की, पर अगर दोनों ही स्थितियों में देखा जाए तो क्या की भगवान ने, रक्षा की, ब्रजवासियों की भी रक्षा की और इंद्र का घमंड तोड़ के भी उसकी रक्षा की। क्योंकि भगवान को पता है कि अगर ये मेरा जीव, अगर ये मेरा अंश अगर इस प्रकार से घमंड में रहेगा तो मेरे पास कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। परीक्षित महाराज के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने माता के गर्भ में उनकी रक्षा की परंतु बाहर उनकी रक्षा नहीं की। परंतु दोनों ही स्थितियों में अगर हम देखें तो भगवान ने क्या की, उनकी रक्षा की थी। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि अगर ये कंसेप्शन हमें क्लियर नहीं होगा कि भगवान से ज्यादा कृपालु कोई नहीं है, तो हम क्या है जगह जगह भागेंगे वहां पर कि शायद और कहीं अच्छा मिल जाए, शायद और किसी जगह अच्छा मिल जाए। और कलयुग में तो प्रधानता है इस चीज की कि लोग भ्रमित करने के लिए तैयार हैं हमें, क्योंकि जो चाहता है कि उसे ठगा जाए, उसे ऐसे लोग मिलते हैं जो उसे ठगते हैं। तो हमें क्या है बचने के लिए पूरी तरीके से ज्ञान से युक्त होना पड़ेगा। अगर हम ज्ञान से भरे हुए हैं, अगर हमारा ज्ञान जो हमारा ग्लास है बुद्धि का वो ज्ञान से भरा हुआ है, तो इसमें अज्ञानता प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि भगवान एक पिता के समान है, तो और एक पिता कभी भी अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते, क्योंकि माता पिता का मर्सीफुल नेचर होता है। हो सकता है वो किसी बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी दे दें, ये भी उस पर कृपा है, और हो सकता है कोई नलायक बच्चा हो उसे मारें उसे डांटें, ये भी उनकी कृपा है। तो ये समझना पड़ेगा, और अगर बच्चा इस बात पे विरोध करता है कि नहीं मेरे पिता हैं वो उनका हृदय बहुत कठोर है, वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी से वंचित कर रहे हैं या मेरी फरमाइशों को पूरा नहीं करते, मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं, या फिर मेरी इच्छाओं को भगवान पूरा नहीं करते, ये मेरे पिता पूरा नहीं करते, तो दरअसल ये समझना होगा कि ये एक नियोफाइट मेंटालिटी है जिससे हम भगवान को कभी समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम भगवान को क्या है अपने धरातल का समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए बुरा मत मानिएगा, हमारे को हम इस कई कई युगों से इस भौतिक संसार में हैं, और हमारी चेतना कैसी बन गई है वैसी ही बन चुकी है। अब हमारे को हर चीज को जज करने की आदत है, जैसे अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान को किसी आर्ग्यूमेंट के द्वारा समझा नहीं जा सकता, पर इस भौतिक संसार में रहकर हमें हर चीज को एक तर्क से समझने की आदत हो गई है। हर चीज पे हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, परंतु ये जो चेतना है ये हमारी भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। तो जैसे कि भगवान हर स्थिति में भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वो रक्षा करें चाहे वो उनका संहार करें, इसी प्रकार से कभी कभी भगवान अपने भक्तों को भी देखते हैं कि भक्तों की लाइफ में डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स आती हैं। सेवा करने के बाद भी भक्तों के जीवन में कभी कभी बहुत कठिनाइयां आती हैं। आप सबको ऑब्जर्वेशन होगा, महसूस किया होगा कि हम पूरी तरीके से सेवा में लगे हुए हैं, अपने आप को समर्पित भी करना चाहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं। तो दरअसल उसका कारण क्या है कि हमारा अहंकार बढ़ा हुआ है, और भगवान क्या है हमारे उस अहंकार का नाश करते हैं। उस अहंकार का नाश करके भगवान हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम भगवान से अलग ना हो जाएं, क्योंकि कृष्ण के लिए बताया गया है कृष्ण से जेलस लवर। एक जेलस लवर होता है ना, वो अपनी प्रेमी को या प्रेमिका को किसी के साथ नहीं देख सकता। तो यही कृष्ण का स्वभाव है, और यही कृष्ण ने ब्रज गोवर्धन लीला में भी किया कि जब कृष्ण ने देखा कि किस प्रकार से सारे ब्रजवासी मुझे छोड़कर इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं, तो कृष्ण से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी कभी भगवान इस तरीके से कार्य करते हैं कि हमें फील ये होता है, हमें ये महसूस होता है कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, परंतु ये क्या है भगवान का एक मर्सीफुल नेचर है, कृपामय है, कृपा है भगवान की। और भक्तों को दरअसल ये बना के रखना चाहिए कि जिस प्रकार से रानियां यहां पर तर्क कर रही हैं कि किस प्रकार से भगवान ने हमारे पतियों की गर्भ में रक्षा की, तो अब रक्षा क्यों नहीं कर रहे। कल के श्लोक में प्रभु जी ने इस पर चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो भगवान ने अगर हमारे पतियों की गर्भ में रक्षा की तो अब रक्षा क्यों नहीं कर रहे। तो दरअसल हमें ये मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए, ये आर्ग्यूमेंटेटिव मेंटालिटी हमारे भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि हम किसी भी तर्क के द्वारा भगवान को कभी नहीं समझ सकते। और एक बात समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है दरअसल ये भगवान की कृपा से हो रहा है, और ये बेस्ट सिचुएशन है। अगर जिस सिचुएशन में अभी हम रह रहे हैं अगर हम उससे खुश नहीं हैं, तो ये जान लीजिए कि ये एथिस्टिक मेंटालिटी है, एथिस्टिक मेंटालिटी नास्तिक विचार है। ये एक नास्तिक विचार है कि जिस परिस्थिति में हम हैं उससे खुश नहीं हैं हम लोग, हैंकरिंग और चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। जिस प्रकार से कोलू का बैल होता है उसको बांध दिया जाता है एक रस्सी के साथ और उसका एक सर्कल होता है। अगर वो अपने हिस्से की घास ना खाए जितने उसके एरिया में है और बाहर की घास को देखता रहे, अरे वाह कितनी अच्छी घास है, कितनी हरी हरी घास है, तो क्या होगा, ना अपने एरिया की खा पाएगा और ना बाहर की खा पाएगा, क्योंकि बाहर की खा नहीं सकता, बंधा हुआ है और अपने एरिया की खाना नहीं चाहता। तो यही हमारे साथ होता है और यही नास्तिक विचार असुरों की तरह हमारे अंदर भी बैठा हुआ है कि हम हर परिस्थिति में सोचते हैं कि नहीं ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। यही रानियां यहां पर प्रश्न कर रही हैं और यही हमारा भी विचार है कि नहीं नहीं ये परिस्थिति अच्छी नहीं है, अगर मुझे वो मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ, जिसके पास साइकिल होती है वो सोचता है कि अगर मेरे पास स्कूटर होता तो अच्छा होता, जिसके पास स्कूटर होता है वो सोचता है कि अगर मेरे पास फोर व्हीलर होता, गाड़ी होती तो अच्छा होता, जिसका जिसके पास गाड़ी होती है वो सोचता है कि अगर एक बढ़िया डीलक्स गाड़ी होती है तो अच्छा होता, जिसके पास डीलक्स गाड़ी है अगर वो ये सोचता है कि अगर मेरे पास प्लेन होता अपना चार्टर्ड प्लेन तो अच्छा होता। पर क्या है, असलियत में कोई भी संतुष्ट नहीं है अपनी स्थिति से और ये नास्तिक विचार है। और भक्त होने के बाद भी, हरिनाम जपने के बाद भी, अगर इस नास्तिक विचार को हम लोग बनाए रखेंगे तो हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप देखेंगे आचार्यों के जीवन में तो ये नास्तिक विचार उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया, जिस भी परिस्थिति में वो रहे उसमें वो संतुष्ट रहे। जब हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे जा रहे थे, क्या उन्होंने कंप्लेंट की थी कि हे भगवान ये रिजल्ट दिया आपने मुझे अपने हरिनाम जपने का, 192 माला करता हूं मैं रोज आपकी और कोड़े पड़ रहे हैं मुझे, ये स्थिति कर दी आपने मेरी, क्या हरिदास ठाकुर ने कंप्लेंट की उसमें? नहीं की। प्रहलाद महाराज, मुझे नहीं लगता अगर आप हम में से कोई भक्ति करने की कोशिश करता है तो हमारे पास वैसी डिफिकल्टीज आती है कि हमें पहाड़ से फेंका जाता है या हाथियों के पैर के नीचे कुचलने की कोशिश की जाती है। पर प्रहलाद महाराज के जीवन में इतनी कठिनाइयां आई, क्या उन्होंने कंप्लेंट की? नहीं, उन्होंने उसे स्वीकार किया। जिस पोजीशन में है, जिस स्थिति में थे, उससे क्या है, प्रसन्न रहे और उसे स्वीकार किया। और इसमें सबसे जरूरी है समझने के लिए पांडवों का उदाहरण कि किस प्रकार से पांडव तो 13 साल के लिए उनको निकाल दिया गया बिल्कुल, पर पांडवों ने कभी कंप्लेंट नहीं की, पांडवों ने कभी ये नहीं किया कि भगवान आप क्या ड्रामे कर रहे हो, हमारे साथ ही रहते हो आप, हमारे साथ खाते हो, दिखाते ये हो कि आप हमारे सुहृद हो, मित्र हो, और हम इतनी परेशानी में हैं और आप हमारी रक्षा ही नहीं कर रहे, क्या पांडवों ने ऐसी कोई कंप्लेंट की? क्योंकि अगर हम इस प्रकार की कोई कंप्लेंट करते हैं या अपनी स्थिति से खुश नहीं होते तो ये एक नास्तिक विचार है। और हमें क्या करना पड़ेगा, भक्त बनने के बाद इस नास्तिक विचार को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये नास्तिक विचार हमारे अंदर रहेगा तो ये कीड़े की तरह हमारे पूरी भक्ति को खा जाएगा। तो इस नास्तिक विचार से हमें हमेशा बच के रहना है। जिस प्रकार से गोवर्धन लीला में जब वर्षा शुरू हुई, घमासान वर्षा, तो नंद महाराज और ब्रजवासियों ने क्या किया उस स्थिति में, क्या उन्होंने कृष्ण को बुला के डांटा कि देख बेवकूफ तेरी वजह से क्या हो गया है? क्या उन्होंने ये कहा कृष्ण को कि देख हम तो अच्छा खासा यज्ञ कर ही रहे थे इंद्र का, अब तूने बीच में आके बाधा डाल दी यहां पर और अब देख हमें कितनी डिफिकल्टीज, कितनी परेशानी आ रही है हमारे जीवन में, क्या उन्होंने ऐसा कुछ बोला? नहीं, जो परिस्थिति उन्हें मिली उसमें वे खुश रहे। पर दरअसल हमारे साथ ये स्थिति नहीं होती। अगर हमारे साथ कोई भी स्थिति होती है, जैसे इसमें बताया गया है यहां पर कि कोई भी व्यक्ति, वन कैनॉट आर्ग्यू विद द एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कि कोई भी व्यक्ति भगवान की किसी भी कार्य से आर्ग्यू नहीं कर सकता, बहस नहीं कर सकता उसमें कि ऐसा क्यों, ये प्रश्न वो भगवान से नहीं पूछ सकता। पर अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो अपने सारे टैक्स भर रहा हूं, मैं तो माला भी करता हूं, मैं तो आपकी भक्ति करने की कोशिश भी कर रहा हूं, मैं तो सारी चीज अच्छी तरीके से करता हूं, व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों होता है, किस प्रकार से हम कैसे फंस जाते हैं कंप्लेंट और ब्लेम के चक्कर में बिल्कुल। और ये विचार हमारे अंदर नहीं आता कि हमारी पूरी भक्ति इस पे डिपेंड करती है कि जो भगवान ने हमें दिया है उसमें हम लोग संतुष्ट रहे। क्योंकि जो व्यक्ति, देखिए जब कृष्ण के पास ब्राह्मण मिलने के लिए आए, जब रुक्मिणी जी की कथा में देखते हैं तो भगवान ने क्या प्रश्न पूछा उनसे, ब्राह्मण से, कि क्या आप संतुष्ट हो? क्योंकि अगर ब्राह्मण बनने के बाद, अगर भक्ति करने के बाद कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता अपनी स्थिति से, इसका मतलब क्या है, वे कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। क्योंकि ये लोभ चीज ही ऐसी है, ये बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी के अंदर से सारा सोना, जितना भी सब कुछ, जो भी वैल्यूएबल चीज थी सब निकाल ली, पर क्या उनका लालच खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। तो ये लोभ कभी खत्म नहीं होता। इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में जो भी स्थिति क्यों ना आए, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उस स्थिति में हम लोग खुश रहें और उस स्थिति में हम लोग भगवान के प्रति कृतज्ञ रहे कि भगवान की बहुत विशेष कृपा है ये, कि भगवान की विशेष कृपा है कि हमारे, हमें इससे बहुत ज्यादा परेशानियां आनी थी, अब बहुत छोटे से में क्या है, बिल्कुल खत्म हो गई है ये। और एक चीज हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी जीव के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। हमें ये फील होता है कि जीव के साथ बुरा हुआ, क्योंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं एक बॉडी के साथ। जिस प्रकार से यहां पर भी यमराज जी समझा रहे हैं कि हम अपने आप को बॉडी के लिए, बॉडली डेसिग्नेशन पे ले जाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। पर एक बात ये ध्यान रखिए कि जीव क्या है, सच्चिद आनंद है, और जीव के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। अगर हम इस बात को ध्यानपूर्वक समझें तो आप ये ध्यान देंगे कि हमारे लाइफ का 100% डिफिकल्टीज खत्म हो गई, अब हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं बची। क्योंकि ये विचार हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे जीवन में कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। और अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मेंटेलिटी राक्षसों वाली है। क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मैं क्या करना चाहूंगा? अगर मान लीजिए आपके साथ किसने कुछ बुरा किया तो आप क्या करना चाहेंगे? उसका बुरा करना चाहेंगे, बदला लेना चाहेंगे। तो यही मेंटेलिटी है असुरों की मेंटेलिटी, कि हम क्या चाहते हैं कि अगर हमें लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो हम क्या बदला लेना चाहते हैं। भक्तों के समाज में अगर हम सोचते हैं कि किसने मेरे साथ गलत किया तो बदला लेना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप को लग रहा है कि विष्णु ने मेरे साथ गलत किया, बदला लेना चाहता है यहां पर। तो ये बदला लेने की भावना क्या है, जब हम ये सोच अपने आप को बॉडी लेवल पे ले आते हैं तो ये बदला लेने की भावना हमारे अंदर आ जाती है। पर ये याद रखिए कि जीव के साथ कभी भी किसी भी समय कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता, वह सच्चित आनंद है और उसकी लाइफ में कभी भी कोई अज्ञानता, कभी भी कोई दुख नहीं आ सकता। और यहां पर हिरण्यकश्यप समझा रहे हैं, इससे पहले वाले श्लोक में भी बता रहे थे, यहां पर दरअसल हिरण्यकश्यप ये कथा सुना रहे हैं यमराज जी की, और वो बता रहे हैं यहां पर कि यमराज जी जो बच्चे के रूप में आए, वे यमराज जी कह रहे हैं कि भगवान ने जब मैं बच्चे रूप में हूं और भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार से मुझे कोई भी जंगल का जानवर नहीं खा रहा और हर परिस्थिति में मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप यहां पर ये सुना रहे हैं कि दरअसल भगवान जो है वो बच्चों की भी रक्षा करते हैं। पर क्या हिरण्यकश्यप ने इसे अपने जीवन में उतारा? हिरण्यकश्यप क्या करेंगे, आगे जाके प्रहलाद को मारने की कोशिश करेंगे। खुद ये सुना रहे हैं कि भगवान बच्चों की रक्षा करते हैं और खुद क्या करेंगे, एक बच्चे को मारने की कोशिश करेंगे। तो यही भेद है दरअसल असुरों में और भक्तों में, कि नॉलेज को कितने लेवल पे हमने अपने जीवन में उतारा हुआ है, ज्ञान को कितने लेवल पे उतारा हुआ है। क्या हमारा ज्ञान एक केवल शुष्क ज्ञान है असुरों की तरह, जो केवल सिर्फ सुनाने के लिए है, सुनाने के लिए, दिखाने के लिए केवल? तो हमें यह जानना होगा कि हम अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को प्योरीफाई करें। किस प्रकार से प्योरीफाई करें, कि हम ये देखें कि किस प्रकार से मैं अपने इस ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूं, किस प्रकार से, जो ज्ञान का लक्ष्य क्या है। देखिए शास्त्र का मतलब है जो शास्त्र का कार्य करें, हमारी अज्ञानता को काटें, वे शास्त्र हैं। और अगर शास्त्र शास्त्र का कार्य नहीं कर रहे तो क्या है, वो हमारे लिए शुष्क ज्ञान है केवल। तो हमारा जो भी ज्ञान है वो शास्त्र का कार्य करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारी अज्ञानता को काटे हुए। तो इस बात को हम समझें कि, और जीवन में उतारने की कोशिश करें कि जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए, जब हमारे जीवन में दुख आए, तो ये समझें कि ये क्या है, एक टेस्टिंग पॉइंट है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या मैं भक्ति में बढ़ रहा हूं या मैं भक्ति में घट रहा हूं। अगर मैंने अपने टेस्टिंग पॉइंट पे ये विचार ले लिया कि ठीक है भक्ति करके कुछ नहीं होगा, इतने समय से मैं माला कर रहा हूं, क्या हुआ आज तक, हाँ थोड़े समय और कर लूंगा, क्या हो जाएगा, इससे अच्छा किसी देवी देवताओं की भक्ति करता हूं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए मुझे। अगर ये विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैं फेल हो रहा हूं। पर हमारे पासिंग का पॉइंट यही है, ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि मैं पास हूं, जब हमारे अंदर ये विचार आएगा कि कृष्ण के प्रति स्ट्रगल हमारा चलता जा रहा है, भक्ति के प्रति स्ट्रगल हमारा चलता जा रहा है, माया रेगुलर बेसिस पे हमारे टेस्ट ले रही है, अलग अलग विचार अलग अलग धारणाएं हमारे जीवन में दे रही है, पर हम क्या है, अभी भी दृढ़ता से लगे हुए हैं। तो दरअसल ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है, और यही यहां पर समझाया गया है कि कोई भी भगवान की विल को, भगवान की इच्छा को नहीं समझ सकता, और जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, इंग्लिश में क्लियर बता रहे हैं यहां पर, ओनली बाय द विल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, केवल भगवान की विल से ये सारे कार्य हो रहे हैं। और अगर हम भगवान की विल को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये असंभव है, क्योंकि एक आश्रित व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को नहीं समझ सकता जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कृष्णा इज फुली इंडिपेंडेंट, यही प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। भगवान ने अपनी मर्जी से सृष्टि की है और अपनी मर्जी से इसका संहार कर सकते हैं। हम भगवान से प्रश्न नहीं कर सकते, हम भगवान से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते इसमें। और अगर भगवान इंडिपेंडेंट हैं तो तभी भगवान हमारे को इंडिपेंडेंस दे सकते हैं, तभी भगवान हमें इस भव सागर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम सोचे कि हम देवी देवताओं की शरण लें, ठीक है भगवान कुछ नहीं कर रहे, अच्छा है कि देवी देवताओं की शरण लें, तो हम देवी देवताओं का इंसिडेंट देखें कि क्या देवी देवताओं के जीवन में होता है। मुझे असुर का नाम याद है, आ रहा तो इंद्र की छत्री और इंद्र की माता की अंगूठी लेके चले गया था। ओके, तो जब वो इंद्र की छत्री और इंद्र की माता की अंगूठी लेके चले गया, तो इंद्र ने क्या किया, भगवान की शरण ली, भगवान के पास गए कि बचाइए, क्योंकि खुद कुछ नहीं कर सकते थे। जब शिव जी परेशानी में फंसे, जब असुर उनके पीछे भागा उनको मारने के लिए, क्या उन्होंने किया, भगवान को पुकारा कि मेरी रक्षा कीजिए। तो अगर ये लोग स्वतंत्र होते तो क्यों भगवान की शरण लेते। और एक बात ध्यान रखिए कि हमारे भाग्य को वही व्यक्ति बदल सकता है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। अगर कोई स्वतंत्र नहीं है तो हमारे भाग्य को कैसे बदल सकता है। अगर कोई खुद बंधन में है तो हमें बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है वह। तो ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। और ये याद रखिए कि इस भौतिक संसार में, इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है ये भगवान के सैंक्शन से ही हो रहा है। भगवान सैंक्शन करते हैं, अप्रूव करते हैं, तभी वो कार्य होता है। और भगवान की जो इंडिपेंडेंस है वे हमारी इंडिपेंडेंस की तरह नहीं है। अगर हमें इंडिपेंडेंस दी जाए तो क्या होता है, हम उसका मिसयूज करते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, टीचर अगर 5 मिनट लेट आती है तो उनको क्या मिलता है, 5 मिनट का इंडिपेंडेंस मिलता है। क्या करते हैं उसमें, हल्ला गुल्ला करना शुरू करते हैं, शोर मचाते हैं। हाँ ठीक है, अब बता स्कूल डेज में क्या करते थे। तो बिल्कुल अलग तरीके के कार्य करते हैं, क्यों, छोटी सी इंडिपेंडेंस मिल गई वो, तो वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस का क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। पर भगवान की इंडिपेंडेंस हमारी इंडिपेंडेंस की तरह नहीं है। भगवान कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस का मिसयूज नहीं करते, गलत उपयोग नहीं करते। भगवान अपनी इंडिपेंडेंस का उपयोग करते हैं सभी जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर लाने के लिए। तो क्योंकि ये तुलना हमेशा हमारे अंदर रहती है, जब हम अपने आप को भगवान के बराबर मानने लग जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है, मतलब मेरे जैसे तो हैं, यहां पर ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं। पर ऐसा नहीं है, भगवान पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। और ये ध्यान रखिए कि भगवान कभी भी गलती नहीं करते। जैसे यहां पर शरीर के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से शरीर का नाश हो जाता है, पर सबसे भगवान का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो ये मैनेजमेंट है कि किस प्रकार से जब व्यक्ति एक शरीर को छोड़ने वाला होता है तो उसके छोड़ने से पहले ही उसका अगला शरीर तैयार होता है, और इमिजिएटली छोड़ते ही वे अपने अगले शरीर में चले जाता है। एक मोमेंट का भी, एक क्षण का भी उसमें गैप नहीं होता। ये भगवान की परफेक्ट मैनेजमेंट है एकदम, और ऐसी मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। तो भगवान से गलतियां, त्रुटियां नहीं होती, मिस्टेक्स नहीं होती, क्योंकि भगवान हमारी तरह नहीं है। और जैसे इसमें बताया जा रहा है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से, भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे इंद्रियां यहाँ पर, स्त्रियां यहाँ पर तर्क कर रही हैं, क्वींस यहाँ पर पूछ रही हैं कि क्यों ऐसा हुआ, अगर हम ये तर्क करते हैं तो ये समझ लीजिए कि भगवान की विल को, भगवान की इच्छा को शुद्ध भक्त भी नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान की इच्छाएं ही ऐसी होती हैं कि उसे समझा नहीं जा सकता। जैसे प्रभुपाद जी का, ये प्रभुपाद जी ने भजन लिखा था इसमें, बोलो कृपा कोइले कृष्ण अथ मेरे प्रति, तो प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं कि माय डियर लॉर्ड कृष्णा, हे प्रिय कृष्ण, यू आर सो काइंड अपॉन दिस यूजलेस सोल, आप कितने कृपालु हैं इस व्यर्थ के जीव पर, बट आई डो नॉट नो वाई यू हैव ब्रॉट मी हेयर, पर मैं जानता नहीं हूं आप मुझे यहां पर क्यों लाए हैं। नाउ यू कैन डू वट एवर यू लाइक विद मी, पर आप कुछ भी जो करना चाहते हैं मेरे साथ कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहां पर क्या बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहां पर क्यों लाए हैं, बट आई गेस यू हैव सम बिजनेस हियर, पर मैं गेस कर रहा हूं कि आपको कुछ जरूरी काम है यहां पर, अदरवाइज वाई वुड यू ब्रिंग मी टू दिस टेरिबल प्लेस, नहीं तो आप मुझे इस जगह पर, ऐसी जगह पर क्यों लाते। तो प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी की इस भजन से हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त के लिए भी, क्योंकि भगवान की इच्छा को दरअसल कोई भी नहीं समझ सकता, भगवान की इच्छा को बलराम भी नहीं समझ सकते। बलराम जी पहले एक्सपेंशन है भगवान के, पर बलराम जी भी भगवान की इच्छा को नहीं समझ सकते। किस प्रकार से जब ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों और बछड़ों को छुड़ाया था, बलराम जी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, बलराम जी समझ रहे थे कि ग्वाल बाल और बछड़े ही हैं, कृष्ण ने अपने आप को प्रकट किया है, अपना अवतार विस्तार किया है उसमें, ये बलराम जी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि कृष्ण की प्लानिंग ही ऐसी है कि कृष्ण को कोई भी नहीं समझ सकता। अब ये समझिए कि कृष्ण को जब बलराम जी नहीं समझ सकते, जब कृष्ण को भगवान के शुद्ध भक्त नहीं समझ सकते, और अगर हम कृष्ण में प्रश्न करते हैं, अगर हम आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं, तो सोचिए ये क्या ये ठीक है, और क्या अपनी आर्ग्यूमेंट से, क्या अपने तर्कों से हम भगवान को समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। और जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था हरिदास ठाकुर का, पांडवों का, परीक्षित महाराज का, नंद महाराज का, कि इन लोगों ने कभी भगवान से तर्क नहीं किया, इन लोगों ने कभी भगवान से नहीं पूछा कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो जब इन लोगों ने कोई प्रश्न नहीं किया तो हम लोग क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं। कभी कभी ये विचार हमारे अंदर आता है कि प्रभु जी, कुछ एक भक्त ने पूछा था पहले कि प्रभु जी पांडवों के साथ इतना बुरा क्यों हुआ, भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की, 13 साल लेट क्यों किया भगवान ने, तुरंत रक्षा करनी चाहिए थी। भगवान तो कह रहे हैं अनन्याश्चिंतो यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभ्युक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान तो हर जगह कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, रक्षा करता हूं, रक्षा करता हूं, भगवान ने क्यों रक्षा नहीं की। तो सबसे इसके और भी कई उत्तर हैं, पर हमें यह समझना चाहिए कि क्या पांडवों ने यह प्रश्न किया भगवान से। जब पांडवों ने यह प्रश्न नहीं किया कि भगवान आपने हमारी रक्षा नहीं की, तो हम क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या हम अपने आप को भगवान के शुद्ध भक्तों से या भगवान से अधिक समझदार समझते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछने से हमें, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे? नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं या इस प्रकार के तर्क करते हैं, तो ये उस प्रकार से जैसे एक नर्सरी क्लास का बच्चा, नर्सरी क्लास का भी नहीं, प्री नर्सरी का बच्चा अभी बैठना सीख रहा है सिर्फ स्कूल में जाके, वो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि पीएचडी में क्या होता है, वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को क्या बोला जाएगा, बेवकूफी वाला प्रश्न, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, बिल्कुल बेवकूफी वाला प्रश्न है। तो ऐसे ही बेवकूफी वाले प्रश्न हम लोग पूछते हैं। और क्योंकि भौतिक संसार में रहकर, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी मेंटेलिटी वैसे ही भौतिक बन गई है, हम अपने मन को कंट्रोल करने की, नियंत्रण में लाने की बार बार कोशिश करते हैं, मन बार बार भागता है, क्योंकि हमारा मन बार बार भागता है तो यही विचार हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, और हम ये सोचते हैं कि भगवान का मन भी ऐसा ही है। हमारा मन चंचल है और हम सोचते हैं कि भगवान का मन भी चंचल है। हम गलतियां करते हैं इसलिए हम ये सोचते हैं कि भगवान भी गलतियां करते हैं, भगवान से भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। और साइंटिस्ट जो हैं या अलग अलग जो आज की आजकल का जो वैज्ञानिक है, मॉडर्न एजुकेशन है, यही प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से भगवान से कुछ गलती हुई है। और किस प्रकार से हम लोग अब इस भगवान की गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी मॉडर्न एजुकेशन इसी पे वर्क कर रही है। पर ये ध्यान रखिए कि भगवान कोई पियन नहीं है, भगवान कोई चपरासी नहीं है, भगवान हमारे घर की कोई मेड नहीं है जिसे हम अपने अनुसार काम करवा सकें। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वे चाहे तो कुछ भी अच्छा भी कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे चाहे हमारी रक्षा भी कर सकते हैं, वे चाहे हमारा संहार भी कर सकते हैं, परंतु हमें यह समझना होगा कि दोनों ही परिस्थिति में हमारी क्या है, रक्षा है। दोनों ही परिस्थिति में भगवान क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से मैं अपने जीव की चेतना को उठाऊं, एलिवेट करूं इसे इसकी पोजीशन से। और अगर हम इसे नहीं समझ पाएंगे तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अधिकांश लोग, जैसे बताया गया, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्वतः, कि हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक भगवान कह रहे मेरी शरण में आता है और उन हजारों में से कोई एक मुझे प्राप्त करता है। क्यों क्यों उन हजारों में से कोई एक भगवान को प्राप्त करता है? क्योंकि भगवान के प्रति इस फेथ को हम लूज कर देते हैं, भगवान के प्रति इस श्रद्धा को हम खो देते हैं कि नहीं, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। देखिए, भक्तों के जीवन में डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हमें ये विश्वास है कि जो मेरे जीवन में हो रहा है, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, ये सबसे अच्छी सिचुएशन है और सबसे अच्छी पोजीशन है मेरी, इससे अच्छा मेरे साथ नहीं हो सकता, कृष्ण जो भी मुझे दे रहे हैं बेस्ट दे रहे हैं इस वक्त, अगर इस विचार को हम अपने अंदर डाल लेंगे तो हमारे जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, जो हमारे भगवान के प्रति प्रेम है, वो बढ़ेगा। नहीं तो क्या है, हम कुड़ते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, और क्या है, दूसरे दूसरे चीजों को अपनाएंगे। बाहर कोई बाबा मिलेगा हमें जो कहेगा ठीक है मैं आपकी सारी इच्छाओं को एक दिन में पूरा कर दूंगा, एक महीने में पूरा कर दूंगा, हम फिसल जाएंगे क्योंकि अटेम्प्ट मारना चाहेंगे कि यहां पूरा नहीं हुआ, चलो यहां कोशिश कर लूं, यहां पूरा नहीं हुआ, यहां कोशिश कर लूं। पर यह ध्यान रखिए कि कृष्ण पूर्ण भगवान है, कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है और कृष्ण अपने भक्तों से पूर्ण शरणागति चाहते हैं, कोई कंसेशन नहीं है इसमें। पूर्ण शरणागति मतलब पूर्ण शरणागति। एक बार हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी, दो तीन सन्यासी एक सोसाइटी में गए थे, वो वर्ण आश्रम धर्म की सोसाइटी थी जिसमें वो शिव की भक्ति करते थे, नटराज की। तो जब वो सोसाइटी में गए, वो सोसाइटी देख के बहुत खुश हुए भक्त कि किस प्रकार से यहां पर सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। पर उन्होंने ये सोचा कि ये जगह तो कंफर्टेबल तो बहुत है, परंतु ये जगह शरणागति के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी कंफर्टेबल जगह पे हम लोग शरणागत नहीं हो सकते। अगर हम कंफर्टेबल हो गए तो शरणागत नहीं हो सकते। तो वो जो हमारे भक्त इस्कॉन के सन्यासी से जो भक्त थे, वो वहां के गुरु से मिले और उनके गुरु ने बताया कि देखो तुम्हारी सोसाइटी में जो समस्याएं आ रही हैं, इस्कॉन में समस्या जो आती हैं, भक्तों के जीवन में जो दिक्कतें आती हैं, उसका कारण ये है क्योंकि तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो वो पूर्ण भगवान है। ये कौन बता रहे हैं? एक शिव जी का भक्त बता रहा है, एक उस संस्था का गुरु बता रहा है कि कृष्ण पूर्ण भगवान है और कृष्ण जब तक आपसे पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागत नहीं हो जाओगे आप, तब तक आपको चैन से नहीं रहने देंगे। आप श्रीमद् भागवतम उठाइए या कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, एक भक्त ले आइए जिसने शांति से बैठे कंफर्टेबली भक्ति की हो, कोई दिक्कत ना आई हो, एक भक्त, कोई उदाहरण नहीं है शास्त्रों में उसका। तो हम यहां पर कंफर्टेबल बनने की कोशिश ना करें इस भौतिक संसार में, यह समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से जो भगवान ने हमें परिस्थिति दी है ये बेस्ट सिचुएशन है और इस सिचुएशन से हम अपने आप को निकाल, इस सिचुएशन में कंफर्टेबल बनने की कोशिश ना करें, हम इस सिचुएशन में ये कोशिश करें कि किस प्रकार से मैं अपना बेस्ट कृष्ण को दे सकता हूं। क्योंकि अधिकांश, देखिए, जब हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं और हमारी बुद्धि भी भौतिक है, तो इस भौतिक बुद्धि से हम पूर्ण भगवान को नहीं समझ सकते। और इस इंटेलिजेंस की जो ये इंटेलिजेंस कंप्लीट तभी मानी जाएगी जब हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि आई एम नथिंग, एवरीथिंग इज कृष्णा, मैं कुछ भी नहीं हूं और सब कुछ करने वाले भगवान है। जब हम इस कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे तो हमारी जो बुद्धि की है सार्थकता है वे। पर जो मॉडर्न एजुकेशन है वो क्या बता रही है आजकल, हम सब कुछ हैं और कृष्ण कुछ नहीं है, आई एम एवरीथिंग एंड कृष्णा इज नथिंग। परंतु क्या है, बुद्धि का जो प्रयोग है वो बिल्कुल इससे उल्टा है। हमें इसे पॉजिटिव वे में कृष्ण से, कृष्ण के प्रति शरणागति करने में लगाना है। और अगर हम ये शरणागति नहीं रखेंगे तो क्या है, हमारी बुद्धि वैसे ही रहेगी जैसे एक कुएं में एक मेंढक, एक कुएं में मेंढक के लिए, ये स्टोरी सबने सुनी होगी, फ्रॉग इन अ पॉन्ड, एक फ्रॉग इन अ वेल। एक कुएं में एक मेंढक की जो बुद्धि होती है वो एक संकुचित मात्रा में होती है, बहुत छोटी सी। वो सोचता है कि यही उसका ब्रह्मांड है, इससे बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। और इसे अच्छी तरह समझने से, जैसे एक फल का कीड़ा होता है, एक फल के अंदर एक कीड़ा होता है, उस कीड़े के लिए वो फल ही ब्रह्मांड है। वो कभी उस फल को भी पूरी तरीके से नहीं देख पाता, उस फल को भी कभी समझ नहीं पाता। तो हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। और इस स्थिति के बाद भी अगर हम आर्ग्यूमेंटेटिव मेंटालिटी को अपनाते हैं, अगर हम तर्क करते हैं, तो क्या है, हम भगवान को कभी नहीं समझ सकेंगे। और खासकर इस मॉडर्न एजुकेशन से, जो मॉडर्न एजुकेशन हमें भगवान से क्या है, दूर ले जाती जा रही है। बच्चे छोटे छोटे से होते हैं और उनको स्कूल में जाकर समझाया जाता है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है, हम केवल केमिकल्स हैं वहां पर, और इस शरीर के बाद क्या है, कुछ नहीं रखा। बहुत अलग अलग तरीके की फिलॉसफीज, जिससे क्या है, हर व्यक्ति को, हर जीव को भगवान से क्या है, दूर खींचा जा रहा है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि हम भगवान को नहीं समझ सकते। केवल अगर भगवान अपने आप को रिवील करना चाहें, भगवान अपने आप को समझाना चाहें, तो हम भगवान को समझ सकते हैं। अगर भगवान अपने आप को रिवील करना चाहेंगे, हमें समझाना चाहेंगे, तो हम समझ जाएंगे, अन्यथा कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार मायावादी होते हैं, उनका क्या सिद्धांत है, चैतन्य पथ शंकर मत, कि पथ तो वो चैतन्य महाप्रभु का अपनाते हैं और मत क्या है उनका, शंकर का। वो भी गीता पढ़ते हैं, वो भी हरिनाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण नाम जप करते हैं, पर क्या है, कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि ब्रह्म में लीन होना है या हम सब भगवान हैं। तो अपनी बुद्धि से हम कभी भी भगवान को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें मुंह के बल गिरना पड़ेगा, और वे हमें क्या देगा, केवल फ्रस्ट्रेशन, और हम हर स्थिति में दुखी रहेंगे। हम हर स्थिति में सोचेंगे कि शायद मेरी स्थिति बदल जाए और मैं खुश हो जाऊं, अगर इस स्थिति से कुछ अच्छा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। हमेशा यही मेंटालिटी बनी रहेगी हमारी। तो हमें क्या करना है, अपनी इस मेंटालिटी से हमें उठना है, और ये समझना है हमें कि इस भौतिक संसार में केवल यही संस्था एक ऐसी संस्था है जो सबको समझा रही है कि दरअसल भगवान कौन है, और आप भगवान को कभी समझ नहीं सकते। बाकी सारी संस्थाएं क्या समझा रही हैं, गुरु ही भगवान है, हम सब भगवान हैं, हाँ, आपको कैसे भगवान बनाया जा सकता है, एक महीने में, तीन महीने में, इस मंत्र का जप करो, देवी देवता भगवान है। केवल यही संस्था एक ऐसी है जो हमें बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, और कृष्ण को कभी भी आप अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो दरअसल एक सेंस में जब हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं तो हम भगवान को समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे होते, दरअसल हम अपनी कुछ इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी ये इच्छा नहीं होती कि मैं भगवान को समझूं, हमारी ये इच्छा होती है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे। हमें एक एटीएम मशीन चाहिए दरअसल, हमें भगवान नहीं चाहिए। एटीएम मशीन होती है ना, कार्ड डाला, पैसे निकाले और घर वापस आ गए, तो दरअसल हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें एक एटीएम मशीन चाहिए। मंदिर में आए, भगवान से प्रार्थना की, अगर भगवान ने पूरी कर दी तो ठीक है, नहीं तो क्या है, ठीक नहीं है ये ना, वहां पर दरअसल कुछ कमी है, है ना, अभी भी लगता है कृष्ण में कुछ कमी है, कुछ पूरा नहीं है कृष्ण में वहां पर। तो क्या है, हर सेंस में अगर आप देखेंगे वहां पर, तो जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि हर तरीके से ये जो आसुरिक मेंटालिटी है हमारे अंदर, भगवान को समझने की, भगवान बनने की, भगवान के प्रति विरोध करने की, भगवान से प्रश्न करने की, हर प्रकार की आसुरिक मेंटालिटी हमने बनाई हुई है। हालांकि हम लोग जप कर रहे हैं, हम लोग शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, पर चेतना कैसी है, आसुरिक है। भक्ति विनोद ठाकुर भी यही बताते हैं कि माथे पे तो हमने तिलक लगाया हुआ है, कंठी माला हमने पहनी हुई है, हाथ में हमारी जप माला है, पर क्या चेतना कैसी है? असुरों वाली। तो हमें क्या करना है, इस चेतना से अपना को उठाना है। किस प्रकार से? जिस भी स्थिति में हम हैं उस स्थिति में भगवान का धन्यवाद करके। किसी भी स्थिति में हम लोग क्यों नहीं है, उस स्थिति में भगवान का धन्यवाद करें, उस स्थिति में भगवान के प्रति कृतज्ञ रहें, ग्रेटफुल रहें भगवान के प्रति कि भगवान आपने जो भी मुझे स्थिति दी है ये बेस्ट है, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे इसे बहुत बहुत बुरा मिलना चाहिए था, आपकी कृपा से ये मुझे फिर भी अच्छा मिल पा रहा है, कम से कम कुछ तो अच्छा है इसमें। तो ये हम अगर हम इस स्थिति में रहेंगे तो आप बिलीव करेंगे कि हमारी भगवान के प्रति जो भक्ति है, हमारी भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो और आगे बढ़ेगी। भगवान गीता में कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम इति सुअर्जुना। जब हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी मटेरियल पढ़ाई करते हैं या कोई भी अवार्ड सेरेमनी होती है, अगर जितना डिफिकल्ट एग्जाम होता है अवार्ड कितना कैसा होता है, उतना ही बड़ा होता है अवार्ड। तो यहां पर भगवान अवार्ड कौन सा दे रहे हैं इस श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति माम इति सुअर्जुना। अवार्ड क्या है? आपका दोबारा कभी जन्म नहीं होगा, क्योंकि अवार्ड इतना बड़ा है तो इसका मतलब टेस्ट भी जो इसका है वो बहुत बड़ा है। और टेस्ट क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान क्लियर बता रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे समझना इतना आसान नहीं है, ये श्लोक बोलना बहुत आसान है, इस श्लोक को समझना बहुत मुश्किल है कि भगवान के जन्म कर्म बहुत दिव्य हैं और भगवान की जो क्रियाएं हैं बहुत दिव्य हैं, भगवान की जो एक्टिविटीज है, भक्तों के किस प्रकार से भगवान असुरों से और भक्तों से डील करते हैं, किस प्रकार से भगवान की एक ही चेतना है, एक ही करुणा है भगवान की सबके प्रति, कि किस प्रकार से अपने जीवों को उठाया जाए। क्योंकि अगर हम इस भौतिक संसार में कंफर्टेबल हो गए तो हम भगवान के पास नहीं जाना चाहेंगे, कभी भी भगवान के पास नहीं जाना चाहेंगे। तो देखिए, कोई भी बहुत धनवान व्यक्ति कभी मंदिर में नहीं आता। जब हमारे पास डिफिकल्टीज आती है, समस्याएं आती हैं, तो हम ढूंढते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसपे हम ट्रस्ट कर सकें, जिसपे हम फेथ कर सकें। तो इसीलिए भगवान हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज लाते आते हैं, हमें दुखी करने के लिए नहीं। भगवान का एक ही इंटेंशन होता है उसके प्रति कि इस भक्त को मेरे प्रति और क्लोज पास लाया जाए, और पास लाया जाए। ये टेस्ट है। और एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं हमारे टेस्ट भी बढ़ते हैं। अभी हमारे जीवन में अगर टेस्ट छोटा आ रहा है, इसका मतलब अगर हमने इसे पास कर भी लिया तो ये निश्चिंत होकर मत बैठेगा कि अगला टेस्ट नहीं आएगा, और टेस्ट बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारे भक्ति में दिन बढ़ रहे हैं, टेस्ट बढ़ता जाएगा, है ना। मन अलग अलग विचार लाता रहेगा कि नहीं कुछ और ट्राई कर ले, कब से तो कोशिश कर रहा है यहां पर, क्या हुआ आज तक, वैसे का वैसे गरीब है, कब से नौकरी नहीं लगी, है कुछ ना कुछ विचार लाता रहेगा मन इसमें। पर हमारा क्या ड्यूटी बनती है, हर स्थिति में कृष्ण के प्रति इस स्ट्रगल को ना छोड़ें। और ये ध्यान रखें कि ये प्रॉब्लम्स, ये डिफिकल्टीज हमेशा मेंटेन रहेंगी, क्योंकि ये भौतिक संसार बना ही प्रॉब्लम्स देने के लिए है। ये भौतिक संसार इसलिए ही बना है कि हमें कभी भी कंफर्टेबल ना हो पाए, और एक दिन हम ये इस विचार पे आ जाएं कि नहीं, इस भौतिक संसार में नहीं रहना। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पर समझना, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छा इसे समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने पूरा इसे एक्सप्लेन किया, प्रभुपाद जी ने, कि किस प्रकार से जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। जो भी हो रहा है भगवान की विल से, भगवान की मर्जी से हो रहा है, और हमें चाहिए कि अपने जीवन से, अपनी चेतना से इस आसुरिक विचार को हम लोग बाहर निकालें, और ये कोशिश करें कि हर स्थिति में भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति रख कर, उस स्थिति में भगवान का धन्यवाद करके ज्यादा से ज्यादा अपने आप को भक्ति में लगाएं। ठीक है, 3 मिनट लेट हो चुके हैं हम लोग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे।